चल रहा था देशना लब्धि के प्रकरण में, कि हम ऐसा समझते हैं कि गुरु तो करना चाहिए ना। बहुतों का ऐसा प्रश्न होता है, गुरु तो करना चाहिए ना, क्यों कि हमारा सारा भार गुरु पर लाद देंगे और वो हमारा कल्याण करे। ये तो अन्यमति की मुख्यता से अन्यमति की मान्यता होती है। जैसे हम देवला ले आने निकले तो बहुत बोझा लेके आए, तो स्टेशन पर आने पर क्या देखा, हमारा सारा भार हमने कूली पर लाद दिया, वो हमारा भार ढोके वो लेके गया डिब्बे तक। वैसे हमारा भार सारा गुरु ही हमारा कल्याण करेगा, ऐसी कितनी लोगों की बात है। गुरु होते हैं, निमित्त होते हैं, परंतु गुरु से ही सब कुछ हो जाएगा। हम तो आराम करेंगे, अभी हमने गुरु बना दिया। ये जैनियों की मान्यता नहीं है, फिर भी अन्य मतियों में ऐसी मान्यता चलती है कि हमने तो अभी गुरु बना दिया है, अभी हमें कोई चिंता नहीं है। और वो गुरु क्या करेगा, तो हमारे जो संसारिक जो उलझने होगी उसमें से हमको छुड़ा देगा। तो ऐसी तो हमारे यहाँ किसी की मान्यता नहीं है, फिर भी थोड़ी ऐसी मान्यता भी चलती है कि गुरु को सर्वत्र समर्पण तो करना पड़ेगा ना, बराबर। ये तो ऐसी बात आती है। तो यहाँ 86 पेज पर हम आए हैं कि सच्चे वक्ता सच्चे उपदेश का स्वरूप तो ख्याल में आ गया, परंतु गुरु को सर्वत्र समर्पण तो करना होगा ना, क्योंकि हमने तो कहीं ऐसा सुना। हम एक दूसरे से बातें सुनते हैं तो हमारे मन में विचार चलता है, हाँ ऐसा भी कुछ होगा ना। समर्पण किसका करोगी, तन मन धन जो पर पदार्थ है उनका समर्पण करना तो सर्व पर समर्पण है। तन भी हमसे जुदा है, धन भी जुदा है, मन भी जुदा है, सर्वस्व समर्पण कहाँ रहा। और पर पदार्थों में किसी का कुछ चलता नहीं, इसलिए उनका समर्पण अपने अधीन नहीं है। हे जीव, तुम तो चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानोपयोग पूरी तरह शास्त्राभ्यास में लगाना, तत्व निर्णय में सारी बुद्धि लगाना ही सर्वत्र समर्पण होगा। अपना जो स्व है उसी का समर्पण करना है। समर्पण करना है क्या, अपना उपयोग शास्त्राभ्यास में तत्व विचार में लगाना है, यही है उसका समर्पण। सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन करते हुए पंडित टोडरमल जी कहते हैं, सच्चा उपदेश सुनकर यह जीव सावधान होकर विचार करने लगता है कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय ही में, पर्याय ने वो एक समय वाली पर्याय नहीं हो, ये मनुष्य पर्याय देव पर्याय जो कहते, तो मनुष्य आदि पर्याय को यहाँ पर्याय कहा है, तो प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है। यदि मनुष्य भव हमारा है, कितने काल तक रहने वाला है, तो थोड़े ही काल की स्थिति है, तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले, सच्चा उपदेश मिला है, यानी जिन धर्म मिला है, ये सारे उपदेश आदि का निमित्त भी मिला है, तो सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भासित होता है, इसमें मेरा ही कल्याण है, ऐसा उस जीव को अंदर से सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन करता है। अभी जो दूर है बहुत, अभी तो ये उपदेश सच्चा है क्या सच्चा है कि इतना भी उसको विवेक नहीं है, और कहीं भी जाकर कुछ भी सुनने लगता है, उसी को सच मानने लगता है, उस जीव की यहाँ बात नहीं हो रही। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया, तो निर्धार किया में क्या क्या आती बात, तो निर्धारण के तीन अंग है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के सातवें अधिकार में से ये बातें यहाँ लिखी। निर्धारण करने के तीन अंग है, पंडित टोडरमल जी ने ये सब लिखा है कि उद्देश्य अर्थात उनके नाम सीखना, उसको कहते उद्देश्य, लक्षण निर्देश यानी उन लक्षणों को जानना, पश्चात विचार सहित परीक्षा करना, जैसे सात तत्व है तो उनके नाम हमने सीखे, जीव तत्व अजीव तत्व आदि आदि, ये कहेंगे उसको हम उद्देश्य। फिर लक्षण निर्देश है, हरेक तत्व का लक्षण क्या है, जीव तत्व किसे कहना, अजीव तत्व किसे कहना, आश्रव तत्व किसे कहना, उसको कहते हैं लक्षण निर्देश, ये तो हमने शास्त्र में से पढ़ा। फिर विचार सहित परीक्षा करना, अर्थात ये तत्व ऐसे ही है या नहीं, इस बात पर विचार करना, जैसे आश्रव को दुख रूप कहा है, दुख का कारण कहा है, अशुचि कहा है, तो क्या हमें वो दुख रूप भाषित हो रहे हैं या सुख रूप भाषित हो रहे हैं, हम विचार करें उस पर। तत्वों के नाम और लक्षण तो शास्त्र में से सीखते हैं, परंतु ये जो स्वरूप बताया है तत्व का, क्या हमें वैसे भाषित होता है, क्या वो सही है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है इसलिए सही नहीं, क्या हमें वैसा सही लगता है, तो ये अपने विचार से उस पर निर्णय करना है। जब तक जिनेन्द्र देव ने जैसे तत्व कहे हैं उसी प्रकार अपना निर्णय नहीं होता, तब तक इसी प्रकार अपने विवेक से विचार करें कि जीव तत्व जो है, अजीव तत्व है जो, तो उसमें ये ऐसे है या नहीं, जिनेन्द्र भगवान ने तो इसको हे ये उपादेय रूप से बताया है और हमें कैसा प्रतीत होता है, तो अपना जो निर्णय है वो जैसा उन्होंने बताया वैसा अपना निर्णय जब तक नहीं होता है, तब तक उस पर विचार करना चाहिए। अपने गुरु यदि संदेह हो, यानी यदि वैसा भाषित नहीं होता है, हमें कुछ अन्यता ही लगता है, तो स्वयं विचार करें या अपने अन्य साधर्मियों के साथ चर्चा करें, अपने गुरु से या अन्य विद्वानों से पूछे या अन्य साधनियों से पूछे, विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करें कि जैसा उपदेश दिया है वैसे ही है या अन्यथा है, ये विचार हमें स्वयं करना है। यहाँ अपनी मान्यताओं का पोषण नहीं करना है। बहुत से लोग ऐसा कहते कि मेरे विचार के अनुसार ये ऐसा है, यहाँ अपने विचार कुछ कार्यकारी नहीं है। हमारे दृष्टि में भगवान को नहीं देखना है, भगवान की दृष्टि में हम कैसे हैं, भगवान की दृष्टि में हमारा स्वरूप क्या है उसे देखना है। ये लेख आते ना मैगजीन्स में, क्या रजनीश के दृष्टि में भगवान मान लो, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे कोई जैनी एक मैगजीन चलाने वाले, बहुत 10-12 वर्ष पहले की बात है, तो मैंने उनसे पूछा आप रजनीश के दृष्टि में भगवान महावीर का स्वरूप लिखते हो तो आपको पांजी स्वामी के जो विचार है उसको लिखने में आपको क्या हर्जा है, तो उन्होंने बहुत सरलता से उत्तर दिया, क्या कि हमें अपना मैगजीन चलाना है। ऐसी बात, जिसको मैगजीन चलाना है और जिसको अपना और पर का अकल्याण करना है उसका भी कौन क्या समझाए, है न। यहाँ अपनी मान्यताओं का पोषण नहीं करना, परंतु जिनदेव ने बताए हुए तत्वों पर अनुमानादि द्वारा विचार कर वैसा ही निर्णय हो जाए उस प्रकार विचार करना है। अब हम गणित की पुस्तक में ऐसे कुछ सोल ये देते हैं ना कि हमको वो सॉल्व करने प्रश्न है, जब हम सारा गणित बराबर करते हैं और उसका उत्तर देखते पीछे पीछे लिया उत्तर, तो उत्तर तो अलग है और हमारा उत्तर अलग आता है, तो क्या करते हैं पुस्तक में फेरफार करते हैं क्या? नहीं, क्या करते हैं वापस दोबारा वो सब देखते एक एक स्टेप देखते कहाँ क्या मिस्टेक हुए है, फिर भी नहीं आया उत्तर, तो फिर अरे तेरा क्या उत्तर आया, मेरा ऐसा है, मेरा तो सही आया, तो दिखा तूने कैसा किया। तो हम अपने ये क्लासमेट के साथ वो कंपेयर करते, नहीं भी हुआ तो टीचर को पूछेंगे ये हम सबको नहीं आता है आप समझा। कब तक ऐसा करेंगे? जब तक जैसे वहाँ उत्तर दिया है वैसे अपना जब तक नहीं आता है गणित का उत्तर तब तक हम तो ऐसा ही करेंगे, वैसे जैसे जिनेंद्र भगवान ने बताया है वैसे ही अपनी मान्यता में अपने विचार से जब तक पूरा नहीं होता है पक्का तब तक स्वयं विचार करेंगे, साधर्मियों से पूछेंगे, नहीं तो विद्वानों से पूछेंगे, ग्रंथ का आधार ले लेकर देखेंगे। परंतु जब तक जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है तब तक यानी वैसा ही अपना विचार नहीं होता तब तक ये तत्व विचार का ये निर्धारण चलता रहेगा। ये देशना लब्धि में ये सारी बातें होती है, इसको देशना लब्धि कहते, अकेले सुनने को देशना लब्धि नहीं कहते, सुना यानी श्रवण किया, ग्रहण किया, धारण किया यानी याद में रखा, और ये निर्धारण ये महत्वाकांक्षा है इसका। निर्धारण करने में ये सारा ये जो तब तक विचार चलते रहेंगे उसके, तो ये निर्धारण कहते हैं।
हमारा सर्वोत्तम काम देशना लब्धि, जो देशना देते हैं उनको अभी धर्म की प्राप्ति नहीं, ऐसे ग्रहों से या मूल्यों से जो देखना लिखी है उससे देखना लब्धि प्राप्त होती है।
आप ऐसा कहते कि जिसको देशना नहीं मिली है उसके देशना कैसे प्राप्त होगी? अभी हमारे पास तो आचार्य उनके ग्रंथ उपलब्ध है, कुंदाचार्य, अमृतचंद्र देव है, पद्म प्रभु मंदहारी देव है, उनके ग्रंथ अपने पास उपलब्ध है और उसको विस्तार करके समझाने वाले भी ज्ञानी के हमारे पास ग्रंथ भी उपलब्ध है, उस पर से हम विचार करना चाहिए कि कौन सा सच्चा है कौन सा क्या है, ख्याल है ना। तो हमें तो अभी हमने बात की ना कि अभी कौन सा ज्ञानी है कौन सा अज्ञानी वो तो हम कह नहीं सकते, परंतु उसके उपदेश में क्या बातें आती है इसका तो निर्णय हम कर सकते हैं। हम कुछ खरीदने जाते हैं चीज बाजार में तो कौन सा सच्चा और अच्छा होता है तो निर्णय होगा। किसी बैंक ने कहा हम आपको 15% ब्याज देंगे तो आप दौड़े दौड़े चले जाएंगे आज की तारीख में, क्यों जाने वाले जाएंगे तो वो तो ब्याज मिलेगा और मुद्दल गायब हो जाएगा। तो वहाँ तो बराबर निर्णय है, बहुत अच्छा चका चौने वाली दुकान है और वहाँ माल खराब मिलता है तो वहाँ से माल खरीद करेंगे, तो उसमें तो बहुत होशियार है। हीरा खरीदना है तो उसका निर्णय भी स्वयं करेंगे, तो किसी ने बता दिया ये हीरा है लेके जाओ तो ले जाएंगे क्या? तो ये दुनियादारी में हम बहुत चौकसाई करते उसे बराबर, परंतु ये ऐसे मामला है धर्म की चीज कोई भी कहे और हम हाँ 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 जी करके उसको ग्रहण करें, ये तो अपनी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि ये तो सारा माल नहीं, ये तो मोक्ष प्राप्त करने वाली चीज है और उसके लिए तो वैसा ही ये हमारा क्षोभ्रम कम है ये बात नहीं चली, संगी पंचेंद्रिय है और आत्मा की रुचि है तो उसको क्षोभ्रम काफी है, इतना पर्याप्त है, पीरियंस भी इसे प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य कहे कि हमारा क्षोभ्रम कम है ये बात नहीं चली है ना, तो इसका अभ्यास भी करना पड़ेगा, द्रव्य क्या है गुण पर क्या है ये बात सीखनी पड़ेगी और सीख कर स्वयं स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करके उसका निर्णय करना पड़ेगा। आज हमारे बच्चे लौकिक पढ़ाई में इतने अग्रसर होते हैं उसके लिए कितने साल पढ़ाई करते रोज के 8 घंटे 3 साल के बच्चे से, अभी तो 2.5 साल के बच्चों को भी ट्यूशन लगाते और स्कूल में डालना है तो 1-2 लाख कोई परवाह नहीं, हमें अच्छे के में अच्छे स्कूल चाहिए, क्यों? क्योंकि वो 20 साल तक पढ़ेगा पहले पढ़ाई करेगा 24 साल तक 30 साल तक और जाके फिर स्याना होगा और फिर वो तो बिल्कुल निर्णय में पक्का हो जाएगा। परंतु शास्त्र एक घंटे में हमको सुनकर समझना चाहिए, उसके लिए हम कोई वहां तो 6 घंटे 8 घंटे भी सीखेगा परंतु इसके लिए 1 घंटा भी उसके पास नहीं है। तो हमें किसकी रुचि अंदर पड़ी है ये बात का ये जाहिरात है, एडवर्टाइज है, हमें किसकी रुचि है। जिसकी रुचि है उसमें वो हम बिना किसी के कहना नहीं पड़ता फिर उसको। अभी जो कोई क्रिकेटियर है वो कितने घंटे प्रैक्टिस करता है, कोई संगीत में कोई माहिर है तो वो कितने घंटे तक रियाज करते हैं। और शास्त्र जो हमको समझना है, अपना स्वरूप समझना है, तो उसके लिए हमें हमारे पास कितनी फुर्सत है, ख्याल है ना। तो ये हमें स्वयं सीखना पड़ेगा और उसमें जो कुछ निर्णय करने की ताकत है वो है हमारे पास, रुचि की कमी। जिसको रुचि हो जाए और उसमें वो आगे नहीं बढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रुचि के अनुसार वैसा पुरुषार्थ भी होगा और वैसे ये सारे पांचों समवाय उसमें लगा ले, वैसे सहज सारे उसको उपलब्ध हो जाए। क्या करें, हमें कोई सिखाने वाला नहीं मिला, हमको उपदेश देने वाले खोटे मिले, ये बात नहीं चलेगी। निमित्त से कार्य होता ही नहीं है। जिसकी अच्छी है और जो कुछ कोणहार है वैसे ही उसको सभी निमित्त सभी कारण वैसे मिल जाए। तो ये अपने पर घटा, ये हम तो पहले बाहर में ढूंढते हैं उपदेश देने वाला कौन है, वो सच्चा देता है कि नहीं देता है, इस तरफ देखते हैं ना। तो हम स्वयं इसको सीखे। अभी तो इतने पुस्तकें इतने सब शास्त्र स्वाध्याय करने के साधन उपलब्ध है तो उसमें तो है ना, हम स्वयं उसमें निर्णय कर सकते हैं कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, उनका स्वरूप क्या है। अब शास्त्र में जो बातें है वो यथार्थ है कि नहीं है, इसका निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। देखो देशना लब्धि ज्ञान की पर्याय है, 87 पेज पर। उपयोग रूप ज्ञान में ये सारी बातें चलती है, उपयोग रूप ज्ञान की बात। देशना लब्धि द्वारा जीव तत्वों का श्रवण करता है, उसका ग्रहण करता है अर्थात समझता है और धारण करता है अर्थात अच्छी तरह याद रखता है, कंठस्थ करता है। यदि उपदेश को धारण नहीं करेगा तो बाद में उस पर विचार करके उसकी योग्यता अयोग्यता का निर्णय कैसे करेगा, यानी ये निर्णय करने की जवाबदारी हमारी है, ये उपदेश योग्य है या नहीं है। जिस तरह गाय घास खाती है और बाद में आराम से बैठकर जुगाली करती है, उसी प्रकार धारणा में लिए हुए सिद्धांतों का स्मरण कर उन्हें विचार में लेकर उन पर चिंतन मनन करना आवश्यक है। खाली याद रखना इससे नहीं, प्रश्नोत्तर की सुविधा है, हमने बहुत सारे प्रश्न पत्रिकाएं सॉल्व की, तो उससे कुछ नहीं होगा। उस पर ये विचार चलने चाहिए, सुनेगा 1 घंटा और विचार चलेंगे 24 घंटे। हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं जिसकी रुचि है तो 24 घंटे उसी के विचार चलते हैं ना। अभी जिसको जिस विषय में रुचि है तो बैठे बैठे भी हम रोटी भी बना रहे तो भी विचार उसके चलेंगे। वैसे जिसको तत्वों की रुचि हो गई है, अभी अस्तित्व गुण समझा, वस्तुत्व गुण समझा और ये कर रहे हैं कुछ कार्य, तो उसके विचार वो उस पर हम लागू करेंगे। दो भिन्न द्रव्य अत्यंत अभाव है या प्रत्येक का स्वच्छतुष्ट भिन्न है, हर चीज में लगेगा वो, तो उसके विचार वैसे वैसे चलेंगे, ख्याल है। तो ऐसे बैठना है, ऐसा बैठना है, ये इधर ना की तरफ दृष्टि है, ये ऐसा एकांत नहीं होता। अभी किसी ने पूछा है तो एकांत में तो बैठना चाहिए ना। जब हम विचार में डूब जाते हैं, किसी खो जाते हैं, तो आजू बाजू में कितनी भीड़ हो तो वो भी एकांत है हमारी, है ना। एकांत से अभी अकेले में जाकर कहीं वन जंगल में बैठना ऐसी बात नहीं है। देशना अर्थात उपदेश सुनते समय जीव को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि जिनागम का उपदेश 4 अनुयोगों में विभाजित है। चारों ही अनुयोगों का तात्पर्य वितरकता है, परंतु प्रत्येक अनुयोग की कथन पद्धति और विषय में अंतर है। एक ही प्रवचन में विवक्षित प्रयोजनवश अन्य अन्य अनुयोग का कथन किया जाता है, उस समय उस कथन का योग्य अर्थ और उसका प्रयोजन हमें समझना चाहिए। शास्त्र का प्रयोजन वीतरागता का उपदेश देना है, रागादि मिटाने का ही उसमें प्रयोजन होता है, कहीं पर भी रागादि बढ़ाने का प्रयोजन नहीं होता। देशना में द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों का बड़ा महत्व है, क्योंकि जीवादि पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान होने की दृष्टि से इसमें विस्तार पूर्वक युक्ति हेतु दृष्टांत देकर निरूपण किया जाता है। प्रमाण और नयन से वस्तु का विवेचन किया जाता है, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराया जाता है। जिस प्रकार स्व पर भेद विज्ञान हो सके, उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय कराया जाता है। जिस कारण वीतराग भाव हो, उस रीति से आश्रवादिकों का स्वरूप बताया जाता है। उसमें ज्ञान वैराग्य के कारण भूत आत्मानुभवादि की महिमा बताई जाती है। पंडित डोडरमल जी कहते हैं, जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में ही मग्न है, उन्हें आत्मानुभव भवनादि में लगाने को व्रतशील संयमादि का हीनपना प्रकट करते। क्या कहते हैं कि जो व्रतशील संयम में ही डूबे है, उतनी क्रिया में ही रचे पचे है, और उनको अभी आत्मानुभव करने की उनको प्रेरणा देते हैं, तो वहाँ कहते कि उसका हीनपना बताया जाता है। ये क्या है, एकरा बिना ना मिंडा, कि हमने एक जीरो इकट्ठा किया, दो जीरो इकट्ठे किए, तीन जीरो, दस जीरो हो गए, कितनी वैल्यू हो गई, जीरो ही। और उसके पहले कोई अंक लिख दो, एक लिख दो, है ना, तो इतने सात जीरो से भी एक लिखेंगे खाली अकेला एक, तो भी उसकी वैल्यू है, और सात जीरो भी हो जाएगी तो उसकी वैल्यू जीरो है। वैसे आत्मानुभव शून्य, ऐसे जो व्रतादि है उसकी वैल्यू भी शून्य है। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। ये हीनपना क्यों बताया, आत्मानुभव नहीं इसलिए उनको हीनपना, परंतु ऐसा अर्थ नहीं कि उनको छोड़ दो। ये हेयपना बताया जाता है वो श्रद्धा की लेवल पर है। ये कल हमने बात की थी ना, कन्या जन्म दी है तो ये पराई है, पराया धन है, वो उसी समय से निश्चित करते हैं। वैसे यहाँ तो आत्मानुभव करने की अपेक्षा से पुण्य को हीन बताया जाता है, वो हेय बताया जाता है। शुभोपयोग प्रकट करने के लिए शुभोपयोग का निषेध करते हैं। अध्यात्म शास्त्र में पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण होने से समान कहलाते हैं, परंतु पुण्य मंद कषाय रूप है और पाप तीव्र कषाय रूप है, इसलिए पुण्य छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है। ये पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, इन्वर्टेड में दिया है ना। उपदेश का मर्म हमें समझना चाहिए, उपदेश का उल्टा अर्थ लगाकर यथार्थ उपदेश का निषेध करना योग्य नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि द्रव्यानुयोग में व्रत संयमादि व्यवहार धर्म को हीन कहा है, सम्यक दृष्टि के विषय भोग को निर्जरा का कारण कहा है। ऐसे कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होंगे, पुण्य छोड़कर पाप में मग्न होंगे, इसलिए ऐसे शास्त्र वाचना सुनना योग्य नहीं। ऐसे भी बहुत से लोग कहते ना कि ऐसे अध्यात्म ग्रंथों में पुण्य पाप को समान कहा है और ज्ञानी के विषय भोग को भी निर्जरा के हेतु कहा है, तो ऐसे शास्त्र पढ़ना योग्य नहीं है, क्योंकि आप गृहस्थ ऐसा शास्त्र पढ़ोगे तो स्वच्छंद हो जाओगे। ये टोडरमल जी ने सारे प्रश्न उठाकर उत्तर दिए। तुम ही विचार करो, तीव्र मिथ्यात्मी जीव कल्याणकारी अध्यात्म ग्रंथों का उपदेश सुनकर भी स्वच्छंदी ही हो गए, परंतु इस कारण विवेकी जीव अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास करना तो नहीं छोड़ेंगे। जो यथार्थ रीति से सुनेगा वह स्वच्छंदी नहीं होगा, परंतु संदर्भ रहित कोई बात, कोई वाक्य पढ़कर या सुनकर कोई जीव स्वयं के मिथ्या अभिप्राय से स्वच्छंदी हो जाए तो उसमें ग्रंथों का कोई दोष है नहीं, उस जीव का ही दोष है। यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करे तो मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है, अध्यात्म ग्रंथों में है ना। कि आत्मा को स्वपर भेद विज्ञान की मूल बात तो अध्यात्म ग्रंथों में, उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। स्वच्छंद होने वाला जीव तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था और अब भी अध्यात्म शास्त्र पढ़कर भी मिथ्यात्व ही रहा, तो जो मिथ्यात्व गिरा ना वो कहाँ गिरा है? वो तो मिथ्यात्व दशा से ऊपर चढ़ा ही नहीं है, तो उसके गिरने की कहाँ संभावना है? परंतु यदि अध्यात्म शास्त्र का उपदेश ही न रहा तो बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है और इसमें अनेक जीवों का बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। इसलिए अध्यात्म शास्त्रों के उपदेश का निषेध नहीं करना, यह सब विवेचन पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के उपदेश का स्वरूप नामक 8वें अधिकार में किया है। वह संपूर्ण प्रकरण अर्थात 8वां अधिकार आदि से अंत तक ध्यान पूर्वक पढ़ना, उसमें और भी बहुत सी बातें हैं, परंतु यहाँ तो फिर भी बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है, इसलिए कह दिया अभी बाकी सब आप अपना स्वयं पढ़ लेना। उसमें अपनी अनेक शंकाओं का समाधान हो जाता है। वे लिखते हैं, कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग रूप अध्यात्म उपदेश है, बहुत उत्कृष्ट है, सो उच्च दशा को प्राप्त हो उनको कार्यकारी है, यानी ये तो मुनियों के लिए है, गृहस्थ के लिए नहीं है। निचली दशाओं को व्रत संयम आदि का ही उपदेश देना योग्य है। पंडित टोडरमल जी ने स्वयं ही प्रश्न उठाकर स्वयं ही उसका समाधान किया है। उनसे कहते हैं, जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक होता है और फिर व्रत होते, वह सम्यक स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है और वह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणान योग के अनुसार व्रतादिक धारण करके व्रती हो। इस प्रकार मुख्य रूप से, सर्वथा नहीं कहा, मुख्य रूप से तो निचली दशा में ही द्रव्यान योग कार्यकारी है और गौण रूप से जिसे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती न जाने उसे पहले किसी व्रतादिक का उपदेश देते हैं। किसी को ये बातें ख्याल में ही नहीं आती है, बिल्कुल उसके बुद्धि के बाहर की चीजें है, तो उसको व्रतों का उपदेश दिया जाता है कि तो ऐसे ये व्रत पालन है, पुण्य में लगाया जाता है इसको। इसलिए ऊंची दशा वालों को अध्यात्म अभ्यास योग्य है ऐसा जानकर निचली दशा वालों को वहां से परांगमुख होना, यानी उससे विमुख होना, उससे हट जाना योग्य नहीं है। तथा यदि कहोगे कि ऊंचे उपदेश का स्वरूप निचली दशा वालों को यानी अज्ञानी को भाषित नहीं होता, उसका उत्तर यह है, और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने। डॉक्टर साहब पटनी जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि ये हम तो सूक्ष्म ज्ञान हमारा अल्प है, हम तो वो जाने नहीं, तो और तो अनेक प्रकार की चतुराई जाने और यहाँ मूर्खपना प्रकट करे वह योग्य नहीं है। अभ्यास करने से वह स्वरूप भली भांति भाषित होता है, अपनी बुद्धि अनुसार थोड़ा बहुत भाषित हो, परंतु सर्वथा निरुद्यमी होने का पोषण करे तो वह जिन मार्ग का द्वेषी होना है। यदि कहोगे कि काल निकृष्ट है इसलिए उत्कृष्ट अध्यात्म उपदेश की मुख्यता नहीं करना, कितने प्रश्न उठाए, जो आज की डेट में भी हमें जो प्रश्न उठते हैं वो टोडरमल जी ने उस काल में भी उठाए और उसका समाधान भी दे दिया। उनसे कहते हैं, यह काल साक्षात मोक्ष न होने की अपेक्षा निकृष्ट है, आत्मानुभव द्वारा सम्यक्वादिक होना इस काल में मना नहीं है। इसलिए आत्मानुभवनादि के अर्थ द्रव्यान योग का अवश्य अभ्यास करना। इसी पंचम काल के कुंदकुंदाचार्य ने मोक्ष पहुड़ में कहा है कि इस काल में भी द्रव्यान योग का उपदेश मुख्य चाहिए। ये कुंदकुंदाचार्य को भी टोडरमल जी ने कोट किया है, वहां मोक्ष मार्ग प्रकाशक है। द्रव्यान योग के शास्त्रों का निषेध करना, जिनवानी का अपमान करना, बाहर फेंक देना, नष्ट करना, वैसा करने वालों की अनुमोदना करना, उनका आदर करना, यह तो नरक निगोद के टिकट पर अपने हाथ से स्वाक्षरी करना है। नहीं समझी? ये समझा रहे। हम बाहर गांव जाने से पहले रेलवे टिकट का आरक्षण करते हैं, उसके लिए स्वाक्षरी करके फॉर्म यानी आवेदन पत्र भरते हैं। रिजर्वेशन के लिए क्या करना पड़ता है? फॉर्म भर के देना पड़ता है। वो बिना साइन का नहीं चलता, क्योंकि हम स्वेच्छा से जा रहे हैं ना, तो साइन करके वो फॉर्म भर के देना पड़ता है, तब रिजर्वेशन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपनी स्वयं स्वेच्छा से वहां जाने की तैयारी करते हैं। यहां भी ऐसा ही समझना, यानी ऐसा जो खोटे उपदेश में चले जाते हैं या ऐसे ऐसे जो विपरीत बातें करते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? जैसी मति वैसे गति, यानी अभी ऐसे खोटी गति में जाने वाले हैं कि उनको ऐसी विपरीत बुद्धि होती है। दिव्य ध्वनि में चारों अनियोगों का कथन आता है तो चारों ही देशना रूप है। देखो, ये देशना में चारों ही अनियोग कार्यकारी, उनमें द्रव्यानियोग कथित तत्वों की हेय गेय उपादेय रूप से परीक्षा करना, उसमें जीवादिक द्रव्यों और तत्वों को पहचानना, स्वपर को पहचानना, वहां त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादिक और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना, निमित्त नैमित्तिक जैसे है वैसे पहचानना, कर्णानियोग चरणानियोग प्रथमानियोग के कथन को जानना, जहाँ परीक्षा हो सके वहाँ करना और न हो सके वहाँ आज्ञानुसार जानकारी करना। कर्णानियोग में अपनी बुद्धि को नहीं लगा, इसको कहते अहेतुवाद आगम। मेरू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 1,00,000 है कि उसके ऊपर 40 योजन ज्यादा है? स्थूल कथन में तो 1,00,000 योजन कहेंगे और एक्चुअल है 1,40,000 योजन। तो इतना ही क्यों है? किसने देखा है? आप गए थे देखने को? ये बात वहां नहीं चली। तो उसमें ये जो कुछ कर्म संबंधी जो जानकारी है, कर्णानियोग की जो अनेक सिद्धांत है, उसमें अपनी बुद्धि से परीक्षा करने की कोई बात ही नहीं है। तो उसमें तो जहाँ परीक्षा हो सके वहां करना, परंतु जहाँ अपनी बुद्धि नहीं चलती है तो वहां ये आगम कथित बात है, सर्वज्ञ की वाणी है, वैसे ही उसको स्वीकार करना। पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, इस प्रकार इस जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। ये देशना लब्धि की बात है। अपना कार्य करने का इसको बहुत हर्ष है। कौन सा कार्य? ये अपना स्वरूप समझने का कार्य। ये अपने लौकिक कार्य की बात नहीं है, पैसा पैसा इकट्ठा करना उसकी बात नहीं है। तो अपना हमें भी जिसको जिसकी रुचि है ना, वो अपना कार्य लगता है, तो अपना कार्य करने की बहुत इसको हर्ष होता है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा न हो, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो, यानी अपने को स्वयं को भाषित न हो, जैसे पर्याय में अहमबुद्धि है, यानी ये जो मनुष्य पर्याय में जो यह मैं हूं ऐसी जो अहमबुद्धि चलती है, वैसी ही अहमबुद्धि केवल आत्मा में न हो जाए। आत्मा ही मैं हूं ऐसी जब तक अहमबुद्धि नहीं होती है और हितहित रूप अपने भावों को न पहचाने, अपने हित रूप भाव और अपने अहित रूप भाव, रागादि अपने अहित रूप भाव, ज्ञानादि अपने हित रूप भाव, उसको जब तक नहीं पहचाने तब तक सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। जब पहचानेगा तो अपने आप में अहम बुद्धि हो जाएगी, वो तो सम्यक्त्व हो जाएगी। और जब तक ये विचार चलते हैं उस काल में वो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दिखती है, सम्यक्त्व के सन्मुख है परंतु अभी मिथ्यात्व चल रहा है उसका। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, लेकिन डरना मत, ये ऐसे जिसके विचार चलते हैं वह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त्व को प्राप्त होगा, इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। ये चतुर्मी के मुख्य मार्ग प्रकाश में से ये सब लिया। वे आगे लिखते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं है। किसको? जो तत्व विचार नहीं करता परंतु ये अन्य सभी बातें करता है। देवादिक तो मानता है, हाँ हम सच्चे देव ही हमारे भगवान हैं, हमको मोक्ष प्राप्त करना है, और क्या करता है, शास्त्रों का अभ्यास भी करता है, महाव्रत भी पालन करे, तपश्चरण भी करे, परंतु अभी तत्व विचार नहीं है। अभी जो ऊपर जो हमने लिस्ट बताई वैसा तत्व विचार उसको है ही नहीं, तो उसको तो समय तो होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला जो तत्व विचार करते हैं और जिसको इसमें से कुछ नहीं है, उनके बिना भी यानी कुछ व्रत अंगीकार किए बिना भी, तप के बिना भी, ये ऊपर लिस्ट बताई ना, बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया के बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है, यानी तत्व विचार से ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, ये यहाँ बताना है। जीव तो केवल तत्व विचार और तत्व निर्णय करने लगता है, उसी से प्रायोगिक लब्धि प्राप्त होती है और गहराई से तत्व चिंतन में डूब जाता है तो शुद्धात्म सम्मुख अवस्था में करण लब्धि और सम्यक्त्व की प्राप्ति भी सहज ही होती है। तो सारा ही सहज ही का धंधा है, ना तो समाचार में हमें ज्ञानी कहे सहज का धंधा, ये सब सहज है, निमित्त भी सहज है, उसका पुरुषार्थ भी सहज, ये सब सहज है, कहीं पर उस करने धरने की ऐसी कोई यानी जिसको कहते हद की बात ही नहीं है, उसमें अन्य कुछ करने धरने की बात नहीं रही। अब प्रायोगिक लब्धि संबंधी चर्चा अब हम यहाँ देखते हैं। बहुतों को ऐसे विकल्प आने लगे कि अब तक तो यह बहुत स्लो चल रहे हैं, अब हमारा करण लब्धि होगा कि नहीं, क्योंकि अनेक शिविरों में ऐसे होता है कि ये पहली बातें समझते समझते इतना टाइम जाता है, क्योंकि शोक समय एक तो हमको बहुत कष्ट करने पड़ते हैं और प्रायोगिक लब्धि के प्रकरण में भी बहुत सारी बातें हैं, तो उसके समझते समझते शिविर पूरा होता है और फिर करण लब्धि रह जाती है। जैसे अनादिकाल से जीव अनंत प्रायोगिक लब्धि तक आ जाता है और करण लब्धि में नहीं जाता, वैसे ही शिविरों में भी होता है। इसलिए यहाँ नहीं होने वाला, यहाँ की बात नहीं करते क्या है, ये तो शब्द नए हैं ना, जो कुछ बातें यहाँ अभी हम प्रायोगिक लब्धि शुरू कर रहे हैं तो उसमें भी अन्य अन्य बहुत सारी बातें जो कर्मों में और जीव के परिणाम में होती है उसकी चर्चा अब हम करते हैं। देखो देशना लब्धि के प्रकरण में हमने देशना तथा देशना लब्धि का स्वरूप विस्तार से देखा, उसके श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण कौन कौन से अंग कौन बताएगा, प्रेरणा हाँ, श्रवण ग्रहण धारण और निर्धारण, परिणमन भी वैसा उसमें होता है, कभी कभी परिणमन को आगे लेते हैं कर्म लब्धि में, परंतु ये परिणमन भी यहाँ से ही वो ले लेना होता, तो ऐसे इसके अंग है। द्रव्यानियोग के जिन तत्वों और सिद्धांतों को, जिन तत्व ने सात तत्व प्रयोजन भी सात तत्व, तो वे जो तत्व है और जो सिद्धांत है जिसको हमें परीक्षा पूर्वक जानना है और निर्णय करना है, उन अति महत्व के विषयों की चर्चा हम जैन तत्व परिचय तथा जिनागम का कारण कार्य रहस्य पुस्तकों में पत्र रूप स्वाध्याय द्वारा कर चुके हैं, यानी जो सिद्धांत वहाँ पता है उसकी चर्चा यहाँ दोबारा नहीं की, यहाँ तो केवल पंच लब्धि में क्या क्या बातें आती है उसकी चर्चा है, इसलिए यहाँ साली बता दिए कि वो निर्णय करना बहुत आवश्यक है। वो सिद्धांत तो अभी हमें मालूम है, जिस हमने पढ़ी थी कौन कौन से सिद्धांतों को जानना जरूरी है। प्रयोजनभूत सात तत्व है, उपादेय आदि, उसका ज्ञान जरूरी है। तो वो सुनना है उसको, उसके लक्षण जानना है और उस पर विचार भी करना है और उसकी परीक्षा करना है। शास्त्रों का श्रवण और वाचन करने के पश्चात अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न लोगों के मन में उठता है। ये सारे हमारे प्रश्न हैं कि अभी कितना शास्त्र पढ़ेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, प्रश्न तो ऐसा उठता है। इसका कारण यह है कि जीव अनादि काल से कुछ करना चाहता है, परंतु मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता, इसका निर्णय न होने के कारण विशिष्ट क्रिया भक्ति पूजा ध्यान स्वाध्याय आदि करके भी मेरा समय दर्शन रूपी कार्य क्यों नहीं होता सोचकर वह निराश होता है। तो ध्यान की क्लासेस में चला जाता है और क्या क्या करता है, परंतु तत्व विचार द्वारा तत्व निर्णय करना यही पुरुषार्थ है। और जब जीव पुरुषार्थ करता है तब अन्य समवाय भी सहज उपस्थित रहते हैं। ये फिर सहज शब्द आ गया, कर्म के उक्षमादि रूप निमित्त भी सहज उपस्थित होता है। जब समय दर्शन होता है, अब ये प्रथम उक्षम समय दर्शन होगा, तो कर्म का उक्षम भी सहज उसकी अपनी योग्यता से होगा। जीव को उसमें कुछ करना करना है ही नहीं है ना, उसको अभी कर्म के उक्षम को यहाँ अंतरंग निमित्त कहेंगे। जब जब समय तो होगा प्रथम उपक्षम समय तो सामने कर्म का उपक्षम भी होगा ही, तो वो कुछ नहीं करेगा। कर्म जीव में कुछ करने वाला नहीं है, परंतु जब यहाँ जीव के ऐसे परिणाम होते हैं तो सामने उसका उपक्षम पाया जाता है, तो उसको कहा वहां निमित्त। तत्वों का उपदेश प्राप्त होने में, यानी जिसको हम देखना कहते हैं, बाह्य गुरु अर्थात ज्ञानी निमित्त रूप से होते हैं, परंतु स्व तत्व की प्राप्ति अर्थात सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। आत्मा स्वयं ही अपना स्वरूप जानने के लिए उत्सुक होता है, ये उत्सुकता कुछ सिखाने से नहीं आती, उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि ही उसकी उपादान शक्ति है, जिसके कारण उसे बाह्य उपदेशक और उपदेश सहज प्राप्त होता है। क्या उसकी अपनी योग्यता से यह सहज प्राप्त होता है? क्या है? उसकी जिज्ञासा और तीव्र रुचि, अपना स्वरूप जानने की तीव्र रुचि हो और सामने समझाने वाला न हो, ऐसा बन नहीं सकता। आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है। क्या आत्मा ही स्वयं सब कर रहा है ना? अभी यहाँ आए, आत्मा स्वयं ही आया, यहाँ स्वयं ही सुन रहा है, स्वयं ही समझ रहा है, स्वयं ही विचार कर रहा है, ये तो स्वयं करता है। तो आत्मा स्वयं ही उस पर बारंबार विचार करने में प्रवृत्त होता है, उसकी स्वयं की योग्यता से ही अन्य बातों संबंधी रस कम हो जाता है, स्वरूप अनुभव की उसे तीव्र लगनी लगती है और उसका उपयोग पर पदार्थ और पर्यायों से हटकर निज ध्रुव त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव पर केंद्रित होता है। किसी के सिखाने से ये बातें नहीं होती। उपदेश में आएगा कि तुम पुरुषार्थ करो, तो किसी के सिखाने से ये नहीं होती, वो स्वयं उसकी तीव्र लगनी हो तो ये बातें होती। कोई गुरु मेरा भला करेगा, ऐसी मान्यता निमित्ताधीन दृष्टि है। निमित्त अर्थात गुरु तो होते हैं, निमित्त होते हैं प्रत्येक कार्य में, निमित्त होता है, यानी निमित्त का निषेध नहीं है यहाँ, निमित्त से कार्य होता है इस मान्यता का निषेध। देशना होती है, परंतु देशना लब्धि तो उपादान से प्राप्त होती है। देशना तो सच्चे देवगुरु और शास्त्र द्वारा ही प्राप्त होती है। सुदेव कुगुरु कुशास्त्र कभी भी देशना में निमित्त नहीं हो सकते। अभी हमारे पिनाक भाई ने पूछा कि इसका अर्थ ऐसा हुआ कि जो अन्य मति है, मोहम्मदन है, क्रिश्चन है और कोई भी जो अन्य मति है, तो उनको तो देशना लब्धि है ही नहीं है, आगे की लब्धि होने का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देशना उनको मिली नहीं, सच्चा तत्व कहाँ सुना है, तो उनको तो क्षोक्षम लब्धि विशुद्धि लब्धि तक आया, देशना लब्धि उनके है ही नहीं है। क्योंकि जो कुछ खोटा उपदेश पर वो भले विचार कर रहा है उसको देखना लब्धि नहीं कहेंगे। देखना लब्धि किसे कहेंगे? जो सच्चे जिनेन्द्र गति जो तत्व है उस संबंधी जो उसका विचार है श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण आदि चलेगे उसको हम देखना लब्धि कहेंगे। तो ये अन्य मती जो तत्व विचार आदि करते हैं जो खोटे तत्वों का जो कुछ उनको चलता रहता है उसको तो हम देखना लग जी भी नहीं कहेंगे। सूक्ष्म विशुद्धि हो सकती है धर्मानुराग बुद्धि बस तत्व। अभी उसमें भी कोई ऐसे होते ना कि जिज्ञासा है परंतु अभी उसको जिसको खोटे तत्व विचार चलते हैं उसको तो वो भी नहीं है परंतु अन्य मती में देखना लब्धि और सॉरी देखना नहीं सूक्ष्म लब्धि और विशुद्धि लब्धि होती है अन्य मती में हो सकती है वहां तक। परंतु यदि वो खोटे उपदेश को सच्चा मानकर उस पर विचार कर रहा है तो उसको एक भी लब्धि नहीं है। और ऐसा कोई है कि जिसको तत्व जिज्ञासा है तो सच्चा तत्व सुनने के प्रति उसकी जिज्ञासा है भले वो अन्य मती है तो उसको तो ये है सूक्ष्म लब्धि भी है और विशुद्धि लब्धि भी है और सच्चा तत्व सुनेगा समझेगा तो उसको देखना लब्धि भी है। चारों एक साथ हो गए अभी तो हम एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। अब जिसने तत्व सुना है उस पर विचार चलता है उसके लिए चारों एक साथ है। जिसने अभी सच्चा तत्व सुना ही नहीं है तो हम कहेंगे उसको दो भी हो सकते हैं। धर्मानुराग रूप बुद्धि है जब तक सही तत्व नहीं सुने हैं और धर्मानुराग रूप बुद्धि इतने तक ही आया है कि तो उसको दो लब्धि हम दे सकते हैं। पर वो है नहीं है वो बराबर है ना उससे क्या हुआ उसको तो शून्य प्रकृति बांधी बस इतना ही उसमें कुछ लब्धि जैसा है ही नहीं उसके। देखो देखना तो सच्चे देवगुरु और शास्त्र द्वारा ही प्राप्त होती है सुदेव कुगुरु कुशास्त्र कभी भी देखना में निमित्त नहीं हो सकते इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय करना हमारा आद्य कर्तव्य है। यानी देव का स्वरूप क्या होता है गुरु का स्वरूप क्या होता है और शास्त्र का स्वरूप क्या है ऐसा नहीं कि विशिष्ट पर्टिकुलर व्यक्ति गुरु है कि नहीं इसका निर्णय नहीं करना है। गुरु कैसे होता है ये अपनी मान्यता में सुधार देव कैसे होता है अपनी मान्यता कैसी उसको देखना है निर्णय अपने में करना है। कोई विशिष्ट व्यक्ति गुरु है कि नहीं वो देव है कि नहीं ऐसा नहीं देखना है उसको है ना। सुदेव आदि कों के द्वारा विपरीत उपदेश मिलता है और पूर्व की विपरीत मान्यताओं का पोषण होता है विशिष्ट क्रिया करने से मोक्ष प्राप्त होगा सुनकर जीवों की दिशा भूल होती है। सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कारण बाह्य देव शास्त्र गुरु कोई विशिष्ट आचरण शारीरिक क्रियाओं को मानकर इस जीव में कारण विपरीतता कायम रखी। हमारे पास कोई बहुत बुजुर्ग जीव आए थे कोई आदमी आया था 87 एज था उसका। उसने बोला मैं अभी 87 वर्ष का हूँ और मैं गए 4 साल से समय दर्शन का पुरुषार्थ कर रहा हूँ फिर भी मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप हमें जरा आपकी पुस्तक पढ़ी है ये तत्व परिचय पढ़ा है तो हमें ऐसा लगता है कि आप कुछ सही हमको मार्गदर्शन करेंगे इसलिए वो आए थे। हमने बोला आपने क्या पुरुषार्थ किया तो सुबह 4 बजे उठकर बराबर ऐसे पद्मासन से बैठकर एकदम नासाग दृष्टि करके मैं ओम का जाप करता हूँ और सिद्ध का जाप करता एक अंतर्मुख 48 मिनट तक कंटिन्यू। मैंने बोला आपको सिद्ध का स्वरूप तो पता होगा तो उसकी क्या जरूरत है यानी जिसे आत्मा का स्वरूप क्या है सिद्ध का स्वरूप क्या है ये पता नहीं है तो वो ध्यान किसका कर रहा है शब्दों का ध्यान कर रहा है। ओम शब्द का ध्यान करना या सिद्ध शब्द का ध्यान करने से क्या फायदा वो सिद्ध शब्द जिसको सूचित करता है वो सिद्ध स्वरूप का जो तक हमें ख्याल नहीं है तो क्योंकि सिद्ध जैसा हम है जैसे सिद्ध भगवान पर्याय में है वैसे हम त्रिकाली हमारा वैसा स्वरूप है ऐसा हमको वहां सोचना है। तत्व निर्णय जो कुछ चलेगा वो तत्व विचार में वो उपलब्धि होगी किसी विशिष्ट शब्द को रटने से कुछ होने वाला नहीं। तो ऐसे ऐसे वो मान्यताएं चलती है। क्योंकि उसने बोला कि हम किसी आदमी के पास गए थे, उसने बोला कि मैंने अमुक कितने ही मुनियों को सम्यक दर्शन दिलाया है, तो इसलिए ऐसी बातें चलती है समाज में। तो कितने ही बोले जी होते हैं और उनको ऐसा ही गलत उपदेश देने वाले भी बहुत से मिल जाते हैं। नासिक देवलाली के नहीं है, नासिक के। परंतु सच्चा कारण तो सम्यक दर्शन का सच्चा कारण उपादान रूप से अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। तो हम तो हृदय के प्रवचन में कितना आता है, कार्य का कारण द्रव्य ही अपने पर्याय का करता है ना, द्रव्य अपने पर्याय का करता है। तो हमारे सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कर्ता कौन है, हम स्वयं हैं। जीव द्रव्य ही उसके अपने पर्याय का करता है, दूसरे द्रव्य का तो कोई कर्ता हो ही नहीं सकता, और हमारे पर्याय का कर्ता कोई अन्य जीव हो ये तो बात 3 साल में नहीं हो सकती है। तो सच्चा कारण तो उपादान रूप से अपने द्रव्य में ही विद्यमान है। स्वभाव पर्याय अर्थात शुद्ध पर्याय का कारण तो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव यानी पारिणामिक भाव है। उसे कारण रूप से स्वीकार कर हम तो कारण बाहर ढूंढते हैं, परंतु ये अपना जो कारण है त्रिकाली स्वभाव उसको स्वीकार करना है, पहचानना है, तो उसी से कार्य होगा इसका स्वीकार करना है। तो उसको कारण रूप से स्वीकार होकर के उससे अभेद होकर जानते रहने से सम्यक दर्शन रूपी कार्य प्रकट होगा। कारण यहाँ है और हम ढूंढ रहे बाहर, है ना? उसके पूर्व प्रकट होने वाली 5 लब्धि संबंधी हम चर्चा कर रहे हैं। तत्व विचार और तत्व चिंतन की अवस्था में कर्मों में कैसी अवस्थाएं बनती है उसकी चर्चा आप प्रायोगिक लब्धि के प्रकरण में करेंगे। प्रथम उसका स्वरूप बताकर पश्चात उसे समझेंगे, क्योंकि अभी जो हम पढ़ेंगे ना तो उसमें तो कुछ समझने आने वाला नहीं, इसलिए पहले ही बताया है कि उसके पहले हम बताते हैं फिर उसको एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, है ना? तो ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। तो प्रायोग्य लब्धि पहले में पहले हमें ऐसा लगता है कि प्रायोग्य लब्धि यानी कुछ प्रयोग करता होगा, कुछ उपयोग को अंदर बाहर करता होगा, ऐसा कुछ प्रयोग की विधि होगी कि जिसके द्वारा यहाँ कुछ कार्य होता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रायोग्य यानी विशेष योग्यता, विशिष्ट योग्यता जिनकी है, या प्रायोग्यता लब्धि भी शब्द आता है शास्त्र में, दोनों शब्द आते हैं, प्रायोग्य लब्धि या प्रायोग्यता लब्धि, दोनों का अर्थ एक ही है। तो जीव की विशुद्धि ऐसी विशिष्ट बन जाती है, उसके तत्व विचार ऐसे निर्मल होने लगते हैं कि उसके फलस्वरूप कर्मों में विशिष्ट बातें बनती है। तो कर्मों में विशिष्ट बातें बनती है उसको बताकर हमें तो जीव के परिणामों की विशुद्धि बताना है, परंतु ऐसे परिणामों की विशुद्धि होती है तत्व ज्ञान संबंधी निर्मलता भी होने लगी है। अभी तत्व विचार में जीव है, अभी तत्व निर्णय तक पहुंचा नहीं है या उपयोग प्रसन्मुख नहीं हुआ है, फिर भी अभी कर्मों में कौन सी बातें होती है उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। हमने ये बहुत बार सुना है कि अभव्य जीव भी प्रायोगिक लब्धि तक आ सकता है, अनंत बार, एक बार की भी बात नहीं, भव्य जीव भी यहाँ तक आए और प्रसन्मुख उसका उपयोग नहीं लगे तो उसको भी आगे की लब्धि नहीं होगी। यहाँ तक आकर अंतर्मूर्त तक वो विचार में चढ़ गया, छूट गया, तो उसको भी आगे का कोई प्रोग्रेस का नहीं होगा। तो अभी हम प्रायोगिक लब्धि की जो कुछ परिभाषा है उसको देखेंगे, फिर एक एक शब्द का अर्थ बहुत विस्तार से देखने वाले। क्षोक्षण लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि पूर्वक जीव की विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है, यानी जिसको सच्ची देशना जिसको हम कहते हैं, जिनेन्द्र भगवान का उपदेश और उस पर तत्व विचार करना, ये देशना लब्धि। तो ये अभी प्रायोगिक लब्धि उसकी शुरू होगी, यानी जिसको अभी सच्चा उपदेश नहीं मिला है उसको प्रायोगिक लब्धि भी नहीं है। तो उसकी विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है, जिनकी विशुद्धि प्रति समय अधिक 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 बढ़ रही है अभी, उसके कारण आयु बिना अन्य सात कर्मों की स्थिति घटकर आयु की जितने निषेक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसकी जितनी आयु की स्थिति बंधी हुई पूर्व भोवी जो बांध के आए ना, अभी वर्तमान हमारी आयु निश्चित है, उसके निषेक एक एक समय में एक एक निषेक फिरेगा तो उसका काल निश्चित है। किसी की 100 वर्ष की आयु होगी, किसी को 50 होगी, 60 होगी, 70 होगी, जो कुछ है उसमें तो कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, ये प्रायोगिक लब्धि। अन्य जो सात कर्म है ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंतराय वेदनीय नाम और गोत्र, उसमें तो आयु बिना अन्य सात कर्मों की स्थिति घटकर सभी कर्मों की प्रशस्त की भी और अप्रशस्त की भी, हमने लंबी लिस्ट देखी थी ना प्रशस्त और प्रशस्त कर्मों की, तो सभी कर्मों की स्थिति घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। पहले तो बहुत कोड़ा कोड़ी सागर थे, हमने कोड़ा कोड़ी का गणित देखा था, 1 करोड़ × 1 करोड़, 1 करोड़ के ऊपर 7 जीरो आते, 1 के ऊपर 7 जीरो, कोड़ा कोड़ी में 14, तो करोड़ × करोड़, खाली करोड़ × करोड़ वर्ष नहीं, करोड़ × करोड़ सागर वर्ष, और सागर का भी हमने माप देखा था। अब 1 कोड़ा कोड़ी से कम उसको कहते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, और किससे ऊपर तो 1 करोड़ सागर से ऊपर और 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम, ये जो स्थिति है उसको कहते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। तो सभी सातों ही कर्मों की स्थिति घटकर इतनी रह जाती है। स्थिति का यह घटना स्थिति कांडक घात द्वारा होता है। ये हमने पहले स्थिति कांडक घात क्या होता है उसको देखा था कि मान लो 70 कोड़ा कोड़ी वाला तो अभी ये प्रायोगिक लब्धि में नहीं है, परंतु मान लो कोई 50 कोड़ा कोड़ी सागर वाला है या 10 कोड़ा कोड़ी सागर है, जो कुछ भी हो उसकी इतनी स्थिति घटकर एक ही कांडक द्वारा इतने कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति घटकर उन निषेकों के सारे ही परमाणु नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति रह जाती सभी कर्मों में। इसको स्थिति कांडक घात हमने देखा था, बहुत विस्तार से इस पर चर्चा की थी। तो एक ही स्थिति कांडक घात, एक ही कांडक घात होता है और उसके द्वारा स्थिति में इतनी कटौती हो जाती और सभी कर्मों की स्थिति अभी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर रह जाती। आयु की जितनी होगी उतनी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, मगर ऐसा नियम है कि जो इतना तीव्र कषाय है ना, तीव्र मिथ्याति वाला, कि इतने का जो बंद कर रहा है तो उसको तो ये तो है ना, क्योंकि हमने देखा था क्षोभ लब्धि से उसका अनुभव कितना कम होता है, स्थिति भी वही तो थोड़ी बहुत घटती चली जाती है। इतना तीव्र वाला जो है उसको ये अलब्धि नहीं होगी, देखना भी उसके सुनने का पात्र है, उसका विचार भी नहीं करेगा, ऐसा तीव्र मिथ्याति थी है ना। तो उसकी भी थोड़ी बहुत कम, एकदम उत्कृष्ट नहीं है, उससे कम है, तारतम्यता। फिर भी अनेक कोड़ा कोड़ी सागर है और वो घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाए। यानी स्थिति का ये घटना कैसा होता है, स्थिति कांडक घात के द्वारा एक अंतर्मूर्ति काल में वो स्थिति कांडक घात होता है और इतने सागरों के निषेक वहां से अभाव होकर नीचे के अंतक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जो निषेक है उनमें वो परिमाणु आकर मिल जाते। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर, ये तो स्थिति का घटना का अनुभाग का घटना होता है कि नहीं घटना, यानी प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है, एक तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों में क्या होता है वो बात बताएंगे और नए बंधने वाले कर्मों में क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। तो पहली बात करेंगे सत्ता में पड़े हुए, तो सत्ता में जो पड़े हुए सातों कर्मों का जो स्थिति है वो घट गई, अंतर कोड़ा कोड़ी सागर रह गई, ये स्थिति घट गई। तो स्थिति तो घट गई, अनुभाग में क्या हुआ, घटा के बढ़ा। अनुभाग में दो प्रकार है, हाँ, अप्रशस्तों का घटेगा और प्रशस्तों का बढ़ेगा। हाँ, शुभ भाव बढ़ने की बात नहीं है, पूर्व में बांधे हुए प्रकृतियों की बात है। वो प्रकृतियों में बांधते समय कम अनुभव बांधा था, अभी वो बढ़ गया। क्यों? यहाँ तत्व विचार चल रहे, हमें लगता है तत्व विचार करने से क्या हुआ, कुछ पुण्य करेगा तो ये कुछ होगा ना। अरे ये पुण्य ही चल रहा है ये तो महान उच्च जाति का पुण्य है। तत्व विचार जो चल रहा है उस समय जो उसके भाव है, तो वो पुण्य परिणाम चल रहे ना उस समय। ये प्राय की लब्धि भी बात है ना, ये भी प्राय की लब्धि की चर्चा चल रही। अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग घटकर घाती कर्मों का लता और दारू भाग रूप तथा अघाती कर्मों का नींब और कांजी रूप शेष रहता है। हमने चार चार स्थान देखे थे अप्रशस्त कर्मों के, अभी दो दो स्थान रह जाते। ऊपर के शैल अस्थि वाले भी निकल गए और यहाँ पर हलाहल और विश्वरूप जो स्पर्धक थे वो भी, उनका भी अनुभाग परमाणु उधर ही है, वे भी अभी नींब और कांजी रूप बन गए। पहले जो परमाणु विष और हलाहल रूप थे वे ही परमाणु अभी नींब और कांजी रूप बन गए। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग का यह घटना अनुभाग कांडक धात द्वारा होता है। उसको भी हमने जेल में देखा था कि अनुभाग कांडक धात यानी अनेक स्पर्धकों का नाश होकर उनके सभी परमाणु कम अनुभाग वाले बन जाते हैं। ये तो सत्ता में क्या पड़ा था उसकी बात हुई। अब जो नया स्थिति बंध होता है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसकी बात अभी हम शाम को करेंगे। जावन के ज्ञान से सुखे दो पालो, सोवानी मन सकन हो सदा।